स्वागत है आपका दिन भर में। मैं हूं इकबाल अहमद। तारीख 10 अक्टूबर दिन गुरुवार। उत्तरी सीरिया में तुर्की सेना का दूसरे दिन भी हमला जारी। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ दिवस के मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से खास बातचीत।
सरकार अगर 650 डिस्ट्रिक्ट्स में अगर इतना सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट दे सकती है, मॉनिटरिंग के सिस्टम्स एस्टेब्लिश कर सकती है, तो सरकार की कमिटमेंट में तो कोई कमी नहीं है।
महात्मा गांधी की नोआखाली यात्रा पर एक खास रिपोर्ट। और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले सुनते हैं विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार सृष्टि श्रीवास्तव से। उत्तरी पूर्व सीरिया से लगातार झड़पों की खबरें आ रही हैं, जहां तुर्की ने कुर्द लड़ाकों के खिलाफ एक बड़ा हमला किया है। तुर्की का कहना है कि उसने 100 से अधिक लड़ाकों को मार गिराया है। तुर्की के विशेष बल सीमा पार कर रहे हैं। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने कहा है कि उनकी सेना कुर्द लड़ाकों को निशाना बनाकर एक सेफ जोन तैयार कर रही है। वहीं तुर्की के राष्ट्रपति ने लाखों शरणार्थियों को यूरोप में भेजने की धमकी भी दी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उत्तरी सीरिया से अमरीकी सैनिकों को वापस बुलाने के फैसले के कुछ दिन बाद ये हमला हुआ है। तुर्की कुर्द लड़ाकों को चरमपंथी मानता है। सीरिया अध्ययन समूह के सह अध्यक्ष, जो सीरिया में अमरीकी नीति पर कांग्रेस और व्हाइट हाउस को सलाह देते हैं, माइकल सिंह, उन्होंने बीबीसी को बताया कि कुर्द बलों पर तनाव बढ़ने से जेलों में बंद इस्लामिक स्टेट के आतंकवादी जेल तोड़कर भाग सकते हैं। मुझे लगता है कि तुर्की के उत्तरी सीरिया पर हमले का व्यापक प्रभाव देखने को मिलेगा। इससे SDF या कुर्द बलों को उत्तर की ओर पांव खींचने होंगे और इसका मतलब ISIS जेल कैंपों की रखवाली से दूर होना होगा, यानी अरब प्रभुत्व वाले इलाकों से वो दूर हो जाएंगे। और मुझे लगता है कि इससे न केवल ISIS लड़ाकों की ओर से जेल तोड़कर भागने की आशंका बढ़ जाती है, और इस इलाकों में मौजूद इस्लामिक स्टेट की टुकड़ियां भी और सक्रिय हो सकती हैं। ये थे सीरिया अध्ययन समूह के सह अध्यक्ष माइकल सिंह के शब्द। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन उत्तर पश्चिम इंग्लैंड में लिवरपूल के पास अपने आयरिश समकक्ष लियो वराटकर से ब्रेग्जिट सौदे के लिए सबसे बड़ी बाधा पर चर्चा करने के लिए एक बैठक कर रहे हैं। वे इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि ब्रिटेन के यूरोपीय संघ छोड़ते समय आयरलैंड में हार्ड बॉर्डर से कैसे बचा जाए। ब्रिटेन ने पिछले सप्ताह ही नए प्रस्ताव पेश किए थे, लेकिन यूरोपीय संघ की प्रतिक्रिया सकारात्मक नहीं रही। ब्रिटिश सरकार का कहना है कि वो इस महीने के अंत में समझौते के साथ या उसके बिना ही यूरोपीय संघ को छोड़ने के लिए दृढ़ है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के जियाजगंज इलाके में पति पत्नी और बच्चे की हत्या के बाद कानून व्यवस्था पर कई सवाल उठ रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने दावा किया है कि मृतक बंधुपाल उसके स्वयंसेवक थे। हालांकि पुलिस ने मृतक परिवार के किसी राजनीतिक पार्टी या संगठन से संबंध होने से इनकार किया है। पुलिस का कहना है कि हत्या की वजह निजी हो सकती है। मुर्शिदाबाद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने BBC को बताया,
हम लोग केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जितना भी जो भी एंगल है सभी एंगल से हम लोग देख रहे हैं। अभी तक जो हम लोग इन्वेस्टिगेट किए हैं उसमें हम लोगों को पर्सनल लेवल पर कोई एनिमिटी एनिमोसिटी के बाहर में कुछ नहीं दिखाई दिया है, और उसी एंगल में हम लोग चल रहे हैं। गिरफ्तार अभी तक कोई नहीं हुआ है, चल रहा है, ठेकेदार चल रहा है, कुछ लोगों का एग्जामिनेशन किया जा रहा है, और जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन मिल रही है उस हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं, और जल्दी हम लोग केस को डिटेक्ट करके जो दोषी है उसको अरेस्ट कर पाएंगे।
ये थे मुर्शिदाबाद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। पोलैंड की लेखक ओल्गा तुकाचुक और ऑस्ट्रेलियाई नाटककार पीटर हैंडके को साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। लंदन में पुलिस ने एक प्रमुख पाकिस्तानी नेता अल्ताफ हुसैन पर आतंकवाद को प्रोत्साहित करने का आरोप लगाया है। पाकिस्तान के सबसे बड़े राजनीतिक दलों में से एक MQM के संस्थापक हुसैन अब लंदन में रहते हैं, लेकिन उन्होंने टेलीफोन के जरिए पाकिस्तान में अपने समर्थकों को भाषण देना जारी रखा। BBC समाचार।
एक बार फिर स्वागत है आपका दिन भर में। मैं हूं इकबाल अहमद। आज है अक्टूबर की 10 तारीख और दिन है गुरुवार। इस वक्त भारत में बज रहे हैं शाम के 7:34:40। आप इस कार्यक्रम को रेडियो के साथ साथ अपने मोबाइल फोन पर भी लाइव सुन सकते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत तुर्की से। उत्तरी सीरिया में कुर्दों के कब्जे वाले इलाकों में तुर्की सेना का हमला दूसरे दिन भी जारी है। तुर्की सेना का दावा है कि उसने कई ठिकानों पर कब्जे कर लिए हैं। भीषण लड़ाई की खबरें मिल रही हैं जिनमें आम नागरिकों के भी मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। 10,000 से ज़्यादा लोग अपने घर बार छोड़कर चले गए हैं। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस इलाके में तैनात अमरीकी फ़ौज को वापस बुलाने का फ़ैसले के बाद से ही तुर्की ने ताज़ा हमले शुरू किए हैं। हालांकि अमरीका का कहना है कि अपने सैनिकों को बुलाने का ये कतई अर्थ नहीं कि उसने तुर्की को इन क्षेत्रों में हमले की इजाज़त दे दी है। बीबीसी संवाददाताओं की भेजी रिपोर्ट का साथ सुनिए सृष्टि श्रीवास्तव से।
उत्तरी पूर्व सीरिया से और अधिक झड़पों की खबरें आ रही हैं, जहां तुर्की ने कुर्द लड़ाकों के खिलाफ एक बड़ा हमला किया है। तुर्की का कहना है कि बुधवार को इस हमले के शुरू होने के बाद से उन्होंने तोप और हवाई हमलों के जरिए 100 से अधिक लड़ाकों को मार गिराया है। तुर्की के विशेष बल सीमा पार कर रहे हैं और कुर्दों का कहना है कि उन्होंने ताल अब्याद शहर में एक जमीनी हमला किया। एक रिपोर्ट में बताया गया कि इसमें अब तक कुल 8 नागरिक मारे गए हैं और कई लोग घायल हुए हैं। बीते बुधवार तुर्की के लड़ाकू विमानों ने उत्तरी सीरिया के कुछ हिस्सों पर बम बरसाए। तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान ने कहा कि उनकी सेना कुर्द लड़ाकों को निशाना बनाकर एक सेफ जोन तैयार कर रही है। वहीं तुर्की के राष्ट्रपति ने लाखों शरणार्थियों को यूरोप में भेजने की धमकी दी है। अंकारा में भाषण देते हुए उन्होंने ये बातें कही।
यूरोपीय संघ, यदि आप इस सैन्य अभियान को आक्रमण बताने का प्रयास करते हैं तो हम एक आसान चीज कर सकते हैं। हम अपने सभी दरवाजे खोल देंगे और लगभग 36 लाख शरणार्थी वहां भेज देंगे।
सीरिया के कुर्द संगठन ने अमेरिका और इस्लामिक स्टेट के खिलाफ बने गठबंधन से इस इलाके में नो फ्लाई जोन बनाने को कहा है ताकि निर्दोष लोगों पर हमले को रोका जा सके। सीरिया में इस्लामिक स्टेट को हराने में कुर्द लड़ाके अमेरिका के प्रमुख सहयोगी रहे हैं। कुर्द लड़ाके अपने नियंत्रण वाले इलाकों में बनी जेलों में बंद हजारों इस्लामिक स्टेट के लड़ाकों और उनके रिश्तेदारों की निगरानी करते हैं। गुलनूर आयबिट तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान की वरिष्ठ सलाहकार हैं। उन्होंने बीबीसी को बताया कि कुर्द ने मुख्य रूप से वहां की अरब और सीरियाई ईसाई आबादी को भगाकर उत्तरी सीरिया में अपने क्षेत्र का विस्तार किया है और तुर्की इसे वापस पलटना चाहेगा।
हम ये सेफ जोन बनाकर क्या करना चाहते हैं? हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि जो लोग वास्तव में वहां के रहने वाले हैं वो वापस लौट सकें। हम सीरिया के लगभग 40 लाख शरणार्थियों को रखने की सारी व्यवस्था देख रहे हैं। वास्तविक रूप में हम इस क्षेत्र में SDF द्वारा जबरन लाए गए आबादी परिवर्तनों को पलट रहे हैं। तुर्की ISIS को फिर से पनपने की अनुमति नहीं देगा।
अमरीकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने इस पर कहा है कि अमरीका ने उत्तर सीरिया में तुर्की के हमले को हरी झंडी नहीं दी थी। पोम्पियो ने उत्तर पूर्वी सीरिया से अमरीकी सैनिकों को वापस बुलाने के फैसले का भी बचाव किया है। कुर्द समर्थित सीरियाई डेमोक्रेटिक फोर्सेज का कहना है कि वो अपनी 7 जेलों में ISI के 12,000 से ज्यादा संदिग्ध सदस्यों को हिरासत में रखे हुए हैं। इनमें से कम 4,000 विदेशी नागरिक हैं। इनकी ठीक ठीक लोकेशन का अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन बताया जा रहा है कि इनमें से कुछ तुर्की से लगी सीमा के करीब हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक संदिग्ध ISI परिवारों के 2 शिविर रोज और अन्य इसा सेफ जोन के भीतर हैं।
तो तुर्की की खबर सुन रहे थे आप सृष्टि श्रीवास्तव की आवाज में। और अब बात भारत प्रशासित कश्मीर की। 5 अगस्त को जब केंद्र सरकार ने कश्मीर को मिले विशेष राज्य के दर्जे को खत्म करने की घोषणा की थी तो उसके एक दिन पहले ही सरकार ने वहां मौजूद पर्यटकों को घाटी से बाहर निकल जाने के आदेश दिए थे। सरकार ने आज से सैलानियों को वहां दोबारा जाने की इजाज़त दी है, लेकिन सरकार के इस फैसले से ज़मीनी हालात में कुछ बदलाव दिखे या नहीं, यही सवाल पूछा बीबीसी उर्दू के हमारे साथी शकील अख्तर ने श्रीनगर स्थित बीबीसी संवाददाता रियाज मसरूर से।
जी, बड़ी देर बाद ये सरकार की तरफ से एक अच्छी घोषणा है जिस पर लोग खुश तो हैं, खास तौर से जो पर्यटन के साथ जिनका व्यवसाय जुड़ा हुआ है उनके लिए ये अच्छी खबर है। लेकिन ये खबर तब अच्छी बन सकती है जब इस घोषणा के बाद बड़ी संख्या में यहाँ टूरिस्ट आ जाएं। हालांकि टूरिस्ट सीजन जो है, यहाँ पर्यटन का जो एक सीजन होता है वो खत्म हो चुका है। अब लोगों ने जिन्होंने कश्मीर आने के लिए बुकिंग्स की थी वो तो उन्होंने अगस्त में ही कैंसिल कर दी और वो उसकी जगह पर कुल्लू मनाली और उत्तराखंड और दूसरे पहाड़ी इलाकों इलाकों में चले गए। पहले भी जो है ऐसी एडवाइजरीज थी, जैसे जब करगिल युद्ध छिड़ा था तो उस वक्त भी ऐसी एडवाइजरी थी, और बाद में जब इसे हटाया गया था तो कुछ दिन के अंदर ही पर्यटन फिर से बहाल हो गया था। लेकिन उस वक्त इंटरनेट और फोन पर कोई प्रतिबंध नहीं था, इसलिए टूर ऑपरेटर्स और ट्रैवल एजेंट्स को बहुत कम समय लगा अपने दूसरे काउंटर पार्ट जो बाकी भारत के राज्यों में है उनके साथ संपर्क बनाने में और उसके बाद टूरिस्ट को यहाँ लाने में। लेकिन इस बार चूंकि फोन और इंटरनेट जो है काफी समय से बंद है, ऐसे में ये घोषणा अपनी जगह अच्छी तो हो सकती है, लेकिन वो सभी होटल मालिक और हाउस बोट के मालिक और शिकारा वाले और ट्रैवल एजेंट्स जो हैं इस अजीब सी सिचुएशन में फंस गए हैं। एक तरफ से घोषणा तो है कि एडवाइजरी खत्म कर दी गई है, लेकिन लोग आएंगे कैसे, और अगर टूरिस्ट यहाँ आए भी तो वो अपने आप को जेल में महसूस करेंगे, ऐसा इन लोगों का कहना है, क्योंकि उनके पास न फोन का संपर्क होगा, न तो अपने घर फोन कर सकते हैं, न ट्रैवल एजेंट को, न ड्राइवर को, न टूर ऑपरेटर को। इंटरनेट भी जो है वो बंद ही है, इसलिए उनकी बुकिंग्स, होटल बुकिंग्स, उनकी फ्लाइट बुकिंग्स जो है वो सभी जो है एक अजीब सी कठिन सूरत हाल है। इसलिए ये अपने आप में एक अच्छी खबर तो हो सकती है, लेकिन अभी तक ये सिर्फ एक घोषणा है।
रियाज, राजनीतिक पार्टियों के जो नेता 5 अगस्त के बाद जिन्हें गिरफ्तार किया गया था उनमें से कुछ को रिहा करने के समाचार मिल रहे हैं, आपके पास कोई सूचना है?
जी हाँ, 3 ऐसे लोग हैं जो कि 3rd या 4th रंग के लीडर्स उनको कह सकते हैं, जैसे उनमें पीडीपी के 2 नेता हैं, नूर मोहम्मद शेख और यावर मीर। नूर मोहम्मद शेख भी विधायक रहे हैं और यावर मीर भी विधायक रहे हैं। नूर मोहम्मद शेख श्रीनगर से ताल्लुक रखते हैं और यावर मीर बारामूला के रफियाबाद के रहने वाले हैं। कांग्रेस के एक और युवा नेता शोएब लोन जो कि सोपोर से ताल्लुक रखते हैं, उनको भी रिहा किया गया है। ये तीनों कांग्रेस और पीडीपी के 3rd रंग के लीडर्स हैं, लेकिन इन्हें किसी घोषणा या किसी अनाउंसमेंट के बगैर कल रात को जो है रिहा किया गया। लेकिन ये सब इस संदर्भ में हो रहा है जब कांग्रेस के साथ साथ सभी राजनीतिक दलों पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और एनसी ने तो बॉयकॉट कर ही लिया है, जो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव हैं वो तो उसमें पहले से ही नहीं थे, पंचायती इलेक्शन से ही। लेकिन दूसरी पार्टियां जिनमें सजाद लोन की पीपुल्स कॉन्फ्रेंस है, हसन मीर की एक पार्टी है और इसी तरह से दूसरे लोग हैं, उन सब ने इसका बॉयकॉट किया था और कहा था कि सिर्फ एक प्लेयर के बल पे आप कोई भी राजनीतिक या लोकतांत्रिक गतिविधि नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों को छोड़ दिया गया है। अब इसमें कुछ लोग कहते हैं कि ये शुरुआत हो सकती है कि सभी नेताओं को छोड़ दिया जाएगा, लेकिन ऐसी कोई आशा नजर नहीं आ रही है, क्योंकि ये लोग जो हैं ऐसे लोग हैं जो कई वर्ष पहले अपनी पार्टियों के विधायक रहे हैं और आज ये उतने ज्यादा पॉपुलर भी नहीं थे, और इन्हें छोड़कर एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि शुरुआत हो सकती है बड़े नेताओं को छोड़ने की, लेकिन ये देखना होगा कि किस तरह से उन लीडर्स को छोड़ दिया जाएगा।
तो श्रीनगर से ये थे बीबीसी संवाददाता रियाज मसरूर। आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है। भारत की बात की जाए तो WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत में करीब 5,70,00,000 लोग डिप्रेशन के शिकार हैं। वहीं मेडिकल जर्नल लैंसेट का कहना है कि आने वाले 10 वर्षों में भारत में कुल आबादी के करीब 1/3 लोग डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। भारत सरकार ने मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 में कई प्रावधान किए हैं, जिसमें से एक ये है कि सुसाइड को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। हमारी सहयोगी सुशीला सिंह ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन से बात की और पूछा कि वो मेंटल हेल्थ के आंकड़ों के बारे में आखिर क्या सोचते हैं।
नहीं, मैं तो देखिए चिंता जरूर करता हूँ, मेरे लिए कंसर्न का विषय वो आपका आंकड़ा सही है गलत है उस पर मैं नहीं जाता। मेरे लिए ये प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को एक्टिवली, प्रोएक्टिवली, एग्रेसिवली, सिंसियरिटी, कमिटमेंट, डेडिकेशन से सरकार को करना चाहिए, वो मेरे लिए विषय है और वो हम कर रहे हैं। मैंने आपको बताया ना, मैं तो 5 साल पहले सबसे पहले देश के अंदर ये 10 अक्टूबर को लेके आया था।
बट ऐसा अभी चेंज नहीं हुआ।
नहीं, चेंज देखिए, थिंकिंग में चेंज हो गया है, एटीट्यूड में चेंज हो गया है, कानून बन गया है, कानून को पालन कराने के लिए अथॉरिटीज़ बन गई हैं सरकार की तरफ से, सब तरह के फाइनेंशियल सपोर्ट सिस्टम्स हो गए, दिखाई दे रहा है, धीरे धीरे दिखाई दे रहा है। अभी आप देखिए ना, ये तो आप दिल्ली में ई भास को जाके देखिए, इसी को पहले पागलखाना बोलते थे।
अभी
देखिए, नहीं देखिए, अभी उसमें बहुत चेंज हो चुके हैं, बहुत जगह
जो कि 43 मेडिकल इंस्टीट्यूट हैं वो पूरी तरह से बदले नहीं।
हमारा ये कहना है कि सरकार पूरी तरह से कृतसंकल्प है। सरकार अगर 650 डिस्ट्रिक्ट्स में अगर इतना सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट दे सकती है, मॉनिटरिंग के सिस्टम्स एस्टेब्लिश कर सकती है, तो सरकार की कमिटमेंट में तो कोई कमी नहीं है। और अभी हमने आज हम अपने जो सारे हेल्थ मिनिस्टर्स हैं, इनके बीच में रेजोल्यूशन भी पास करने वाले हैं कि सब मिलकर हम इसको देश से जो भी मेंटल हेल्थ के केयर के संदर्भ में अगर कोई भी जिसे कहते हैं कि बदनामी का या इनह्यूमन अप्रोच का जो भी एक इस फील्ड को कलंक लगा हुआ है उसको बिल्कुल हम मिटा के रहेंगे।
जी, सरकार ने अपनी तरफ से ह्यूमन फेस देने की कोशिश की है, लेकिन अगर साइकेट्रिस्ट की बात की जाए तो उनकी संख्या आप भी बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे कि 4,000 से भी कम है, और भारत की जनसंख्या को अगर देखें तो हमें 15,000 से 20,000 की जरूरत है, तो इसके लिए सरकार क्या करे?
इसीलिए जो मेडिकल कॉलेजेस है, साइकेट्री के डिपार्टमेंट्स हैं, अस्पताल हैं, जहाँ जहाँ भी जो जो सुविधाएं उनको मैंने अभी आपको बताया ना कि अपग्रेड उनको करने के लिए सब जगह पर सपोर्ट दिया जा रहा है।
पोस्ट ग्रेजुएशन की
सीट्स भी बढ़ाने का प्रयास है, साइकेट्री के संदर्भ में लोगों को जानकारी देने का भी प्रयास है, यानी जो जो कुछ ह्यूमनली टेक्निकली और व्यवहार में किया जा सकता है उसको हम कर रहे हैं।
तो क्या साइकेट्रिस्ट की संख्या बढ़ाई जाएगी?
बिल्कुल
विचार कर रही है।
बिल्कुल हमने बताया ना कि हम तो ऑल आउट
नंबर्स में आप बता पाएंगे कितने?
अब ये देखिए, ये अभी ऐसे एग्जैक्ट नंबर की बात नहीं की जा सकती, लेकिन जब हमने आपको कहा कि देश में इतने सारे डिस्ट्रिक्ट्स में, इतने सारे अस्पतालों में, इतने सारे साइकेट्री के डिपार्टमेंट्स में सब जगह सपोर्ट सिस्टम्स क्रिएट हो रहे हैं, अपग्रेडेशन हो रहा है, तो इसका पर्पस यही है कि हर तरीके से क्वालिटेटिवली, क्वांटिटेटिवली, इंस्टीट्यूशनल सिस्टम्स के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, सब में गुणात्मक परिवर्तन हो।
ये थे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, जिनसे बात कर रही थी हमारी सहयोगी सुशीला सिंह।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
बीबीसी हिंदी।
और अब एक खास रिपोर्ट। साल 1947, भारत और उसकी आजादी में अब कुछ ही फासला था, लेकिन भारत के कई हिस्सों में भयंकर सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए। उस समय के संयुक्त बंगाल के नोआखाली में हुए दंगों में एक रिपोर्ट के मुताबिक कम से कम 5,000 हिंदू मारे गए थे। गांधी पर कई लोग ये आरोप लगाते हैं कि बंटवारे के समय हुए दंगों में गांधी मुसलमानों की रक्षा के लिए ज्यादा चिंतित थे, लेकिन सच्चाई शायद इससे अलग है। नोआखाली में दंगों को रोकने के लिए गांधी न सिर्फ 4 महीने वहां कैंप किया उन्होंने, बल्कि जब बिहार में दंगे शुरू हो गए तो वहां जाने से पहले गांधी ने अपने कुछ अनुयायियों को भी नोआखाली छोड़ गए। कैसे शुरू हुआ गांधी का नोआखाली का सफर और क्या कुछ किया उन्होंने वहां, सुनिए बांग्लादेश से बीबीसी संवाददाता फैसल मोहम्मद अली की इस खास रिपोर्ट में।
बात पुरानी है, 73 साल पहले की। 7 नवंबर 1946 के दिन एक ट्रेन चौमुहानी रेलवे स्टेशन पर आकर रुकी। पैसेंजर गाड़ी के थर्ड क्लास कंपार्टमेंट से हाथों में लंबा डंडा और मनु गांधी का सहारा लिए महात्मा गांधी ट्रेन से नीचे उतरे। स्टेशन से निकलते ही वहीं गांधी ने मुसलमानों और हिंदुओं की एक सभा को संबोधित किया और शुरू हुआ उनका 4 माह का नोआखाली प्रवास। हरादन चक्रवर्ती को अपनी उम्र ठीक तरह से याद नहीं, कहते हैं शायद 80-85 के हों, लेकिन वो खूनी मंजर आज भी उनका पीछा नहीं छोड़ते।
मुख्यमंत्री आयोजन खूब सुंदर भाव करार पड़े रात जो 7:30 बजे
वो लोखी पूजा का दिन था, शाम के तकरीबन 7-7:30 बजे होंगे। उन्होंने हमें पूजा के लिए जाने से रोक दिया, फिर मुसलमानों ने दंगे शुरू कर दिए, हमारे घरों को आग लगाने लगे, हम जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भागे। लोग बच्चों को रोने तक नहीं देते थे, वो उन्हें ढूंढ कर मार डाल रहे थे। मेरे मामा को वो ज़बरदस्ती मस्जिद में ले गए और नमाज पढ़वाया। माओं और बहनों के साथ जो हुआ उसे बताया नहीं जा सकता।
हरादन चक्रवर्ती का गांव चांदपुर उसके बाद हिंदुओं के लिए उजड़ गया। अब हरादन चक्रवर्ती वहां से कोसों दूर बांस घर में रहते हैं, हिंदुओं के बीच सुरक्षा भाव के साथ, और स्थानीय सनातन हरिसभा मंदिर के पुजारी हैं। गांधी नोआखाली में 4 माह रुके और तकरीबन 85 गांव का दौरा किया। श्रीरामपुर के घर में गांधी 13 दिन रुके। हालांकि मिट्टी की दीवारों और टिन की छत वाले इस घर के रंग रूप में वक्त और घर के मालिकों ने कई बदलाव कर दिए हैं, लेकिन गांधी के चॉकलेट का जायका अब्दुल कलाम भुइयां की जबान पे आज भी चिपका है।
प्रार्थना
के लिए जाता था लेकिन चॉकलेट का लालच भी होता था। मीटिंग में वो आग्रह करते थे, प्रार्थना होती थी और चॉकलेट बांटी जाती थी।
भुइया को धोती से लटकी गांधी की जेब घड़ी, घुटने तक की धोती, मनु गांधी का बापू के साथ साथ चलना और वो भजन सब याद है।
रघुपति राजा राजा राम पोती तो पावन सीता राम।
वो कुरान की आयतें पढ़ते थे, लोगों के घरों में जाकर उनकी खोज खबर लेते थे, जानने की कोशिश करते थे कि कौन किस हाल में है। जो बीमार होते थे उन्हें वो दवाइयां देते थे।
एवं हिंदू मुसलमान तुम्हारा जाइयो ना।
वो लोगों को कातने के लिए सूद देते थे। हिंदू मुसलमानों से उन्होंने कहा कि तुम यहाँ से मत जाओ। उनकी इस बात की वजह से जो हिंदू जाने का मन बना चुके थे वो नहीं गए और जो चले गए थे वो वापस लौट आए।
नोनी बाला बोनिक तब नई नवेली दुल्हन थी। गांधी को देखने के लिए उन्होंने मीलों पैदल सफर किया था। कुछ मानते हैं कि नोआखाली गांधी के अहिंसा के सिद्धांत की एक और कड़ी परीक्षा थी। वो सफल रहा या असफल, इस पर अलग अलग राय है। नोआखाली में गांधी आश्रम ट्रस्ट के डायरेक्टर राहा नाभा कुमार कहते हैं,
आई थिंक ही विल सक्सीड। प्रथमत हलो जे गांधी नोआखाली आसार पर,
मेरे विचार से वो सफल रहे। पहली बात तो गांधी के नोआखाली आने के बाद दंगा बढ़ा नहीं, दूसरे दंगा पूरी तरह रुक गया। तीसरा, 1947 से लेकर अब तक बांग्लादेश के कई इलाकों में दंगे हुए हैं लेकिन नोआखली में कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। इसलिए मैं तो कहूंगा कि गांधी का नोआखली आना पूरी तरह सफल रहा।
ट्रस्ट का भवन जहां गांधी 1947 की जनवरी के आखिर में पहुंचे और एक रात रुके, बैरिस्टर हेमंत कुमार घोष की 2600 एकड़ से अधिक की जमींदारी का हिस्सा हुआ करता था, जिसे उन्होंने गांधी को दान में दे दिया। नोआखाली का काम जारी ही था कि बिहार और फिर पंजाब में दंगे शुरू हो गए और अपने कुछ अनुयायियों को यहाँ छोड़ गांधी वहां के लिए रवाना हो गए। राहा नाभा कुमार कहते हैं कि जयाग में मौजूद आश्रम को अगस्त 1947 में पाकिस्तान के बनने के बाद नई मुश्किलों का सामना करना पड़ा।
47 देश भागेर पर अधिकांश गांधी कर्मीरा
1947 में आज़ादी के बाद गांधी के अधिकतर साथी पाकिस्तान छोड़कर भारत चले गए। जो यहाँ रह गए उन्हें भारत के जासूस के तौर पर देखा जाता था, जो पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं, और उन्हें लंबे समय के लिए जेल काटनी पड़ी। हमारे आश्रम के संस्थापक चारू चौधरी को बांग्लादेश की स्वतंत्रता के बाद 1971 में रिहा किया गया। 1965 भारत पाक युद्ध के बाद ट्रस्ट की सारी संपत्ति को दुश्मन की संपत्ति घोषित कर दिया गया। अब हमारे पास 22-23 एकड़ जमीन बची है।
फिलहाल ट्रस्ट के भवन का काम, जहां एक म्यूजियम चलता है, भारत से आने वाले फंड की कमी की वजह से रुका पड़ा है। आश्रम में ही स्कूल और हथकरघा के काम के अलावा ट्रस्ट के मुताबिक बांग्लादेश के 5 जिलों के विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों में उसका कार्य जारी है, मगर लगता है इसमें और तेजी लानी होगी। अब गांधी पर जानकारी को ही लें, जहांआरा बेगम आश्रम में सूत कताई का काम करती है। मगर गांधी पर विचार गांधी को न जानने से ही तय नहीं हो जाते। हरादन चक्रवर्ती की जान शायद गांधी के नोआखाली यात्रा का ही उपहार है और उनकी अपने देश में मौजूदगी भी। लेकिन
ना, गांधी
का दिल बहुत बड़ा था। वो कहते थे कि कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा सामने कर दो, लेकिन वर्तमान समय ऐसा नहीं है। आज का जमाना है जैसे को तैसा।
फैसल मोहम्मद अली, BBC, नोआखाली, बांग्लादेश।
और अब वक्त हो गया है चिट्ठियों का।
आपकी राय। नमस्कार, आपकी चिट्ठियों के साथ स्टूडियो में मैं हूँ राजेश प्रियदर्शी और मेरे साथ हैं
सूर्यांशी पांडे।
बहुत सारे पोस्ट कार्ड लेकर आप बैठी हैं हाथ में,
और चिट्ठी से शुरुआत करते हैं। और पहला पीला पोस्ट कार्ड हम ले रहे हैं विष्णु वर्मा का, जो अयोध्या उत्तर प्रदेश से लिखते हैं। और वो कह रहे हैं कि बहुत जल्दी दिन भर फिर अपनी औकात में आ गया है। कश्मीर की खबरों के लिए दिन भर को बढ़ाया गया था, अब क्या हो गया? क्या कश्मीर के हालात सामान्य हो गए हैं? क्या कश्मीर की संचार सुविधा पूर्वतर बहाल हो चुकी है?
کشمیر کے بارے میں جو خبریں نہیں مل رہی تھیں، جو کلیمپ ڈاؤن تھا، ٹیلی فون لائنیں بند تھی، انٹرنیٹ موبائل سیوا بند تھی، وہ سب کچھ سامان्य حالت پر اب بھی نہیں لوٹی ہے، ابھی بھی بہت دقتیں ہیں، جن جیون دھیرے دھیرے سامان्य ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ ہم نے یہ کاریکرم شروع اس لیے کیا تھا کیونکہ کشمیر سے کسی اور سوتر سے، کسی اور ذریعے سے لوگوں تک خبریں نہیں پہنچ رہی تھیں، لوگوں کو خبریں نہیں مل رہی تھیں۔ ہم بی بی سی میں اپنی یہ ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ ان حصوں سے، دیش کے ان بھاگوں سے، دیش کے ان لوگوں کی خبریں بھی آپ تک پہنچے جو عام طور پر دوسرے سادھنوں سے آپ تک نہیں پہنچتی ہیں۔ اس لیے ہم نے کاریکرم کا سمے بڑھایا تھا، لیکن ہمارا نرنے صرف اس لیے تھا کیونکہ وہاں سے دوسرے ذریعے سے خبریں نہیں آ رہی تھیں، تو ہمیں لگا کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔
تو آگے بڑھیں تو اسد علی لکھتے ہیں ضلع رامپور سے، اتر پردیش سے، اور وہ لکھتے ہیں کہ دنیا جہاں اور وویچنا کا انک، یہ کاریکرم بہت اچھے ہیں بی بی سی کے، اور بی بی سی انڈیا بول کاریکرم بھی شروتاؤں کو بہت اچھا لگتا ہے، اور سوموار صبح وسط اللہ خان صاحب کی ڈائری بہت اچھی لگی، ان کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہنسانے والی باتیں ہوتی ہیں اور وہ ہنساتے ہنساتے کئی گہری بات کہہ دیتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ سیریا دیش پر دنیا جہاں کاریکرم ضرور سنائیں شروتا کو، یہ ان کی اچھا ہے۔
سیریا پر ہم کاریکرم دنیا جہاں میں پہلے بھی کر چکے ہیں، اور آپ کا کہنا بالکل صحیح ہے کہ وہاں کی استھتی بہت گمبھیر ہے اور ہم کو اور کاریکرم کرنے چاہیے، اور ہم ضرور کریں گے، اور ہماری جو روزمرہ کی انتراشٹریہ سماچاروں کی جو رپورٹنگ ہے اس میں بھی ہم سیریا کو کافی پرمکھتا دیتے ہیں، اور آپ کے سجھاؤ پر ہم وچار کریں گے۔
تو پہلا ای میل گوتم دتا نے بھیجا ہے، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ بدھوار شام کے سبھا میں محمد شاہد کی دنیا جہاں کی پرستوتی اچھی لگی، اور لگتا ہے کہ وہ پہلی بار دنیا جہاں پرستوت کر رہے ہیں، ان کے وچار میں شاید وہ پہلی بار کر رہے ہیں، اور بہت اچھی طرح سے انہوں نے پرستوت کیا، اور کہہ رہے کہ 105ویں جینتی پر بیگم اختر پر کی گئی وویچنا ریحان فضل دوارا انہیں اچھی لگی۔
بہت شکریہ، آپ کی تعریف ہم ان دونوں لوگوں تک پہنچا دیں گے۔
اور راجیش جی، ایسے دو سجھاؤ والے میل بھیجے ہیں دو الگ الگ لوگوں نے، میں ایک ساتھ ہی ان کا نام لینا چاہوں گی۔ ایک چورو راجستھان سے لکھتے ہیں، نام ہے ان کا ہری رام، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آج کے اتہاس پر نمسکار بھارت یا دن بھر میں کوئی 5-10 منٹ کا کاریکرم ضرور شروع کریں۔ اور ساتھ ہی ایک خط لکھتے ہیں رفیق ابراہیم پرکار، جو دوہا قطر سے لکھتے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سے نویدن ہے کہ ایک واٹس ایپ نمبر شروع کرے جس پر شروتا اپنے وچار اور سوال وائس میسج کے دوارا بھیج سکے۔
یہ سجھاؤ کافی دلچسپ ہے، اور ہمارا ایک واٹس ایپ نمبر ضرور ہے، لیکن وہ فیکٹ چیک کے بارے میں ہے، جس میں ہمارے جو پاٹھک اور شروتا ہیں ہمیں میسج بھیجتے ہیں خبروں کی وشوسنیتا جاننے کے لیے، لیکن جو پاٹھکوں کی سجھاؤ اور پرتکریا کے لیے واٹس ایپ نمبر شروع کرنے کی بات ہے، اس پر واقعی غور کیا جا سکتا ہے، یہ ایک اچھا سجھاؤ ہے۔ اور میرے خیال سے گھڑی اب اشارہ کر رہی ہے کہ ہمیں چلنا چاہیے۔ آپ کی رائے میں آج اتنا ہی۔ اگر آپ ہمیں ڈاک سے پتر بھیجنا چاہیں تو ہمارا پتہ ہے بی بی سی ہندی سیوا، پوسٹ باکس نمبر 3035، نئی دلی 110003۔ اور اگر آپ ہمیں ای میل بھیجنا چاہیں تو پتہ وہی ہے hindi.letters@bbc.co.uk۔
نمسکار۔
بھارت اور دکشن افریقہ کے بیچ پونے میں کھیلے جا رہے دوسرے ٹیسٹ میچ کے پہلے دن بھارت نے 3 وکٹ کھو کر 273 رن بنا لی ہیں۔ بھارت نے ٹاس جیتا اور پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا۔ اوپنر روہت شرما تو کچھ خاص نہیں کر سکے، لیکن میانک اگروال نے لگاتار دوسری سینچری بنائی۔ چتیشور پجارا نے بھی 58 رن بنایا، جبکہ کپتان وراٹ کوہلی 63 رن بنا کر ابھی کریز پر جمے ہوئے ہیں۔ اور چلتے چلتے سن لیتے ہیں پرمکھ سماچار۔
بی بی سی سماچار سرشتی شریواستو سے۔ انڈونیشیا کے سرکشا منتری پر ایک ویکتی نے چاقو سے حملہ کیا ہے۔ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں دکھائی دے رہا ہے کہ حملہ ور نے جنرل ویرانٹو پر کار سے ان کے باہر نکلتے ہی حملہ کر دیا۔ فی الحال سرکشا منتری جکارتا کے ایک اسپتال میں استھر استھتی میں ہیں۔ روانڈا میں پچھلے ہفتے ہوئے ودروہی حملوں میں کے بعد پولیس نے ایک وپکشی نیتا سے پوچھ تاچھ کی ہے۔ اس حملے میں 14 لوگ مارے گئے تھے۔ اتری پور سیریا سے لگاتار جھڑپوں کی خبریں آ رہی ہیں، جہاں जहां तुर्की ने कुर्द लड़ाकों के खिलाफ एक बड़ा हमला किया है। तुर्की के राष्ट्रपति ने लाखों शरणार्थियों को यूरोप में भेजने की धमकी भी दी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन उत्तर पश्चिम इंग्लैंड में लिवरपूल के पास अपने आयरिश समकक्ष लियो वराडकर से ब्रेग्जिट सौदे के लेकर एक बड़ी सबसे बड़ी बाधा पर चर्चा करने के लिए बैठक कर रहे हैं। बीबीसी समाचार।
दिन भर की ये सभा यहीं समाप्त होती है। आज स्टूडियो की जिम्मेदारी संभाली तिलक भाटिया ने, और अब इकबाल अहमद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।